नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।